हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। ये है 14वां श्लोक। अब मैं केवल एक बार श्लोक बोलूंगा, आप लोग एक बार बोलेंगे, उसके बाद हम फिर शुरू कर देंगे पढ़ना। क्लास की स्पीड तेज होगी, क्लास की स्पीड अध्यापन की तरह होगी, प्रवचनम मीन्स अध्यापनम। और यदि कोई आपको डाउट रहेगा तो मैं बता दूंगा, जो चीजें आसान होगी समझने में वह मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलिए। हाँ, एक बात यह है कि प्रसंग समझ लेना चाहिए। प्रसंग यह है कि 6 प्रश्न किए गए थे शौनकादि ऋषि जी के द्वारा सूत गोस्वामी को। उसमें कहा था अवतार कथा शुभा, अवतार कथा को बताइए। और शुभ क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी अविद्या का नाश करने वाली है। वैसे इस अवतार कथा का श्रुतिफल ये है कि जो कोई व्यक्ति उसको सुनता है तो आप आगे सुनने वाले हैं, दुख ग्रामा विमुच्यते, दुख के समूह से मुक्त हो जाता है। और वह क्यों होता है उसकी चर्चा हम जब श्लोक आएगा तब करेंगे। अभी हम लोग नवे अवतार क्या नाम है इनका, पृथ्वी महाराज की चर्चा करेंगे, इनका स्मरण करेंगे। तो मेरे पीछे बोलिएगा, अनुपम कृष्ण प्रभु मेरे पीछे बोलिए। ऋषिभिर याचितो भेजे,
ऋषिभिर याचितो भेजे,
नवम पार्थिवम वपुः,
नवम पार्थिवम वपुः,
दुग्धे मामोष धीर विप्रास,
दुग्धे मामोष धीर विप्रास,
तेनायम स उषत्तमः,
तेनायम स उषत्तमः।
ऋषिभिः अर्थात ऋषियों के द्वारा याचितः, याचना किए जाने पर, भेजे मतलब स्वीकार किया। इसी का पहला श्लोक था भेज रे मुनियो था ग्रे, ऐसे भी एक जगह श्लोक आए हैं। तो भेजे का अर्थ होता है स्वीकार किया। भगवान ने, भगवान नारायण ने ऋषियों के द्वारा याचित होकर के स्वीकार किया। कौन सा रूप स्वीकार किया? नवम पार्थिवम वपुहु, नवे अवतार के रूप में आए और पार्थिवम वपु पृथ्वी के शासक के रूप में आए, राजा के रूप में आए। उनका नाम था पृथु। इन सब श्लोकों में आप देखेंगे पहली लाइन उनके स्वरूप का लक्षण, स्वरूप लक्षण को बताती है, और दूसरी लाइन उनके तटस्थ लक्षण को बताती है। स्वरूप लक्षण मतलब आकृति प्रकृति, और तटस्थ मतलब कार्य। ये मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं समझता हूं कि आप समझते हैं, या कोई कठिनाई है? ठीक। दुग्धे मा मोश धीर विप्रास, तो उन्होंने दोहन किया। किसका दोहन किया था? पृथ्वी का, जो कि गाय के रूप में थी। और क्या दोहन किया? औषधि का दोहन किया। औषधि मतलब पृथ्वी उपज नहीं दे रही थी, यज्ञ नहीं हो रहे थे उनके पिता वेण के समय में, इस कारण से पृथ्वी उपज नहीं दे रही थी। तो फिर जब ये राजा बने, ने यज्ञ शुरू किया और फिर भी पृथ्वी उपज नहीं दे रही थी, तो फिर उन्होंने पृथ्वी को डांट लगाई थी। और बाद में पृथ्वी घबरा जाती है, फिर वह गाय का रूप, पहले ही गाय का रूप ले लेती हैं, फिर कहते हैं कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तो गाय हूं, तो कहते तुम अपना कार्य नहीं कर रही हो, तो तुमको मार करके मैं भोजन दे दूंगा सबको, अपने जो प्रजा को, इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ है राजा का ये कर्तव्य है कि वह जो अपना कर्तव्य नहीं कर रहा उसको दंड दे। लेकिन फिर वहां पे माता पृथ्वी फिर कहती है ये कारण नहीं, कारण ये है कि कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, लोग पापी हो गए इसलिए नहीं दे रही हूं। तो फिर भगवान पृथु महाराज सबको लेके आते हैं, अलग अलग लोगों को बछड़े के रूप में लेके आते हैं, और फिर दोहन करते हैं, अलग अलग वस्तुएं दोहन करते हैं। लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दोहन कर लेते हैं, कुछ लोग शराब का दोहन करते हैं, कुछ अन्य वस्तुओं का दोहन करते हैं। और इससे समझ में आता है कि पृथ्वी सब कुछ दे सकती है जैसी हमारी इच्छा होती है। सर्व काम दुघा मही, विप्र मतलब ब्राह्मणों के द्वारा, अयम सह उषत्तम, यह अवतार बहुत ही आकर्षक था। क्यों आकर्षक था? क्योंकि हर प्रकार की इच्छा जिसको चाहता था वह पूर्ण हो रही थी। अनुवाद, हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तात्पर्य अनुपम कृष्ण प्रभु पढ़िए।
राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी
पिता के, आवाज बहुत कम आ रही है, क्यों सर? इसका गेन यहाँ से बढ़ाइए, में आपको पता है? नहीं, वो वहां से नहीं, इसका गेन किसी को पता होना चाहिए। हरे कृष्णा, मेरी आवाज तो आ रही है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। तो जब तक सही कर रहे हैं तब तक मैं उसको पढ़ता हूँ। राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपने प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी आ गया बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दें, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्हें भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना करी और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। क्या क्या बातें आप लोगों ने सीखी इस तात्पर्य से, थोड़ा स्टाइल चेंज कर दिया जाए क्लास का। ओके अनुपम पार्थ प्रभु,
जो पहले के जो ब्राह्मण थे वो खुद शासन नहीं करते थे, वो मतलब मार्गदर्शन करते थे।
यस, पहली चीज हमने यहाँ पे सीखी कि ब्राह्मण जो है वह राजा राज्य नहीं कर सकता है। कुछ भक्तों को शायद ना पता हो पृथु महाराज ध्रुव महाराज के ही वंश में आए थे। पृथु महाराज के पिता का नाम था अंग वेण और उनके पिता का नाम था अंग, और वस्तुतः वेण एक तरह से पिता भी नहीं थे क्योंकि अंग महाराज बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन अंग महाराज की जो पत्नी थी वह मृत्यु की बेटी थी और इस कारण से उनका जो बच्चा हुआ वह बहुत क्रूर था। वह अपने बच्चों को अपने साथियों को जमीन में सॉरी पानी में डुबो के मार देता था इस प्रकार से, और बहुत समझाने के बाद भी वह समझ नहीं पाया। तो अंग महाराज बहुत दुखी हो गए और कोई भगवान की इच्छा है कि मेरा खराब पुत्र है, जंगल में चले जाते हैं और वेण को राजा बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? जान रहे थे कि वेण जो है बहुत क्रूर है, लेकिन क्यों बनाया? क्योंकि जो दस्यु थे वो बहुत बढ़ गए थे, तो दस्यु मतलब डाकू बढ़ गए थे। डाकू ने सुना कि वेण बन गया है राजा तो सब भाग गए, क्योंकि अगर ये पकड़ लेगा तो बहुत क्रूर दंड देगा। तो यह तो हो गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया क्योंकि वेण ने सारे यज्ञ बंद कर दिए और कोई भगवान की जो पूजा होती थी सब बंद कर दिया। फिर ऐसा स्थिति आ गई जब ब्राह्मण ने बोला नहीं आप ऐसा मत करो, आप भगवान विष्णु को क्यों अस्वीकार कर रहे हो इस प्रकार से? तो कहा मैं ही विष्णु हूँ, तुम विष्णु की सेवा क्यों करते हो? तुम लोग, मैं तुम्हारा भरण पोषण करता हूँ और तुम विष्णु की पूजा करते हो। तुम तो ऐसे व्यक्ति की तरह हो, ऐसी स्त्री की तरह हो जो अपनी पति की सेवा नहीं करती, जार पुरुष की सेवा करती, यही तो बोला था। तो फिर ब्राह्मणों को बहुत क्रोध आया और ने कहा ये बहुत बड़ा अपराध कर रहा है भगवान विष्णु के प्रति, और ने क्या कहा, मतलब हुंकार किया और उस हुंकार से ही वो मर गए। इतने शक्तिशाली ब्राह्मण होते थे। अच्छा है कि हम लोग इतने शक्तिशाली नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पता लगा हम किसी बात पे, तुमने आज भिंडी सब्जी बनाई, तुमने छोला बनाया, बेचारा रसोईया मर जाएगा इस चक्कर में। तो इतनी शक्ति हमारे पास नहीं है, कितना भी हूं करे हमारा कुछ नहीं होने वाला ना किसी का। और दूसरा बात हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं उनके मार्गदर्शन में राजा को चलना चाहिए। ये भी स्वाभाविक सी बात है कि जब व्यक्ति रजगुणी कार्य कर रहा है, शासन करना, मैनेजमेंट करना, ये करना, हमेशा धर्म का निर्णय ठीक से नहीं कर पाएगा। तो अच्छा है कि ब्राह्मण उसको कंसल्टेंसी दे कि भाई ये डिसीजन, ये तुम्हारा जो निर्णय है वह धर्मोचित है कि नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि क्षत्रिय को ज्ञान नहीं होता है। प्रभुपाद जी प्रथम महाराज के प्रसंग बताते हैं कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों को लीडर्स को शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक विशेष अवस्था में हमें क्या करना है वह शास्त्र के प्रमाण के आधार पर होता है। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्य कार्य विजानितौ, कार्य मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। आज आप देख लीजिए कि गोहत्या हो रही है खुलेआम और जो लीडर है उसे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये शास्त्र। अच्छा दूसरा बात एक और आ सकता है, तो ब्राह्मण ही धर्म की स्थापना क्यों नहीं कर देते? राजा को सुझाव देने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ब्राह्मणों के पास यह शक्ति नहीं है कि वो धर्म को बलपूर्वक स्थापित करे, कभी कभी बलपूर्वक भी स्थापित करना पड़ता है। तो इसलिए आवश्यक है कि जो राजा है वह डेमोक्रेसी से नहीं आए, क्योंकि इस समय तो यथा प्रजा तथा राजा हो जा रहा है। ये आप समझते हैं, सब बातों को सजा समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी कारण से, क्योंकि राजा के पास बुद्धि नहीं है, इसलिए वो लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोच रहा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने समझा, हम की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम एक उपमा दे रहे हैं, ये समझा, सही समझा कि कोविड से जनता को खतरा है कि नहीं, तो वो भारत की सारी अर्थव्यवस्था को एक तरफ रखकर भी लोगों को बचाने के लिए लोगों पे एक थोप रहे बात कि तुमको रूम के बाहर नहीं जाना है, जाओगे तो डंडा पड़ेगा। इसमें तो कोई मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, तो ये कोविड नामक बीमारी को तो महत्वपूर्ण मान रहे हैं और इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो अविद्या रूपी बीमारी है जिससे जीव बार बार जन्म मृत्यु चक्र में फंसा है, इसको ठीक करने के लिए कोई तकलीफ नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, खुद भी पता नहीं कि मैं जन्म मृत्यु चक्र में फंसा हुआ हूं, और ये सबसे बड़ी परेशानी है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसी कारण से क्या कहा जाए, उनको बताया भी जाएगा तो शायद उसको रजिस्टर ही नहीं करें। माइक पे बताइए, माइक पे बताइए, कॉर्डलेस माइक दीजिए इनको।
रूपाज जी ने एक लेटर लिखा था कि पार्लियामेंट में जितने भी नेता लोग हैं वो सब वैष्णव होने चाहिए और भगवत गीता का पाठ करें।
यस, और पार्लियामेंट की शुरुआत से पहले 15 मिनट कीर्तन होना चाहिए, तब लोगों की बुद्धि ठीक होगी, सोचने की क्षमता आएगी। तो यहां हम देख रहे हैं कि क्योंकि राजा बहुत अच्छे थे, इस कारण से पृथ्वी हर प्रकार की वस्तु जो इच्छित है वह सब क्या कहेंगे प्रजा को दे रही थी। ठीक है, तो ये हमने आज पृथ्वी महाराज का उदाहरण सुना, और बाद में पृथ्वी महाराज का ही बहुत सुंदर वक्तव्य है कि भगवान विष्णु के सामने जब जाते हैं तो कहते हैं, भगवान विष्णु मुझे ही वरदान दीजिए कि मुझको हजारों हजारों कान हो ताकि मैं भगवान के बारे में सुन सकूं। ऐसे बहुत लंबा कथा है, बहुत लंबी कथा है, उसको जब हम आप प्रसंग में आएंगे तब चर्चा करेंगे। अभी हमने खाली पृथ्वी महाराज के बारे में छोटी सी बात। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये प्रकट कैसे हुए थे। जब इनके पिता वेण मर गए तो उनके शरीर को, मतलब इंग्लिश में कहेंगे प्रिजर्व, हिंदी में क्या कहेंगे, सुरक्षित रखा गया था। हाँ, और उसके बाद ब्राह्मणों ने, क्योंकि फिर दस्यु बढ़ गए, फिर डाकू बढ़ गए, अराजकता बढ़ गई, तो फिर उनके शरीर को मथा गया, और मथने के द्वारा पहले क्या पैदा हुआ था, एक काला पुरुष पैदा हुआ था, क्योंकि वेण के शरीर से जितना पाप था वह इसमें प्रविष्ट हो गया, उसको कहते हैं निषाद इत्यादि। और उसके बाद फिर पृथु महाराज उत्पन्न हुए थे, और उनकी पत्नी का नाम अर्ची था, क्या अर्ची सही बोल रहा हूँ, हाँ अर्ची, वह उत्पन्न हुई, और उसके बाद वह लक्ष्मी जी की अंश थी और ये भगवान विष्णु के अंश थे। तो इनको आदि अवतार कहा जाता, सॉरी आदि राजा कहा जाता है। कौन सी शक्ति इनके पास है, जब तक मुझे स्मरण आ रहा है भूपालन शक्ति, मुझे स्मरण अगर आ रहा है तो भूपालन शक्ति इनके पास थी। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी, जब गाय का रूप लेकर के पृथ्वी भाग रही थी तो वह पृथ्वी महाराज से कहती है कि अगर आप मुझको मार दोगे तो आपकी जो प्रजा उसको रखोगे कहां, तो कह रहे हैं मैं अपनी शक्ति से सारी प्रजा को धारण करूंगा, इतने शक्तिशाली थे। ठीक है, आगे अगला श्लोक देखते हैं। रूपम स जगृहे मात्स्यम,
रूपम स जगृहे मात्स्यम,
चाक्षुषो दधि संप्लवे,
चाक्षुषो दधि संप्लवे,
नाव्यारोप्य मही महिया, नाव्यारोप्य मही मैया,
नाव्यारोप्य मही मैया,
अपाद वैवस्वतम मनुम,
अपाद वैवस्वतम मनुम।
अब एक प्रश्न ये है कि क्या आप पहले दूसरी लाइन में स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण देख पा रहे हैं? रूपम स जगृहे मात्सम, क्या आकृति थी, मत्स्य का रूप लेकर के वह जगृहे मतलब ग्रहण किया, उन्हें मत्स्य का रूप प्रकट किया। आकृति के बारे कैसी आकृति हुई, इस अवतार की आकृति कैसे हुई, ये प्रश्न तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्या कैसी हो गया, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है। मात्स्यम लिखा है, मात्स्यम मतलब मछली जैसा। चाक्षुषो उदधि संप्लवे, चाक्षुष मतलब चाक्षुष मनमंत्र में, जस्ट अभी हमारा कौन सा मनमंत्र चल रहा है, वैवस्वत, इसके पहले वाला था चाक्षुष, और वो कौन से नंबर का मनमंत्र था, फोर्थ, जीरो नंबर, प्रसाद नहीं मिलेगा, स्पेकुलेशन। अभी कौन सा मनमंत्र चल रहा है, सातवां, तो पिछला वाला था छठा, चौथा कैसे हो गया है, गलती करते हो, मैथ भी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो छठा मनमंत्र था, और उदधि संप्लवे, संप्लवे मतलब प्रलय, उदधि मतलब जल, तो उस समय आंशिक प्रलय हो गई थी। और प्रभुपाद का कीर्तन बंद कर दिया, ऐसे उचित नहीं, हम क्लास भी दे रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, कीर्तन समय बंद कर दीजिए। और उन्हें क्या किया, तटस्थ लक्षण क्या है, नाव्यारोप्या, नाव थी उस नाव में सबको आरोप्य मतलब बैठा करके, मही मय्याम पृथ्वी रूपी मय, वो नाव जो है वो पृथ्वी रूपी, पृथ्वी ही नाव के रूप में थी और उसमें रक्षा करी, किसकी रक्षा करी, वैवस्वत मनु की। वही वैवस्वत मनु उस चक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत राजा के रूप में थे। उनको भगवान, मैं शॉर्ट में वैसे लीला बता दूंगा लेकिन अभी लीला बताऊंगा लेकिन अभी पहले अनुवाद पढ़ लेते, तो उनकी रक्षा करी और उन्हीं के साथ बाकी सभी बीजों की रक्षा करी, जितनी भी योनियां हैं उनके बीजों की रक्षा करी। ऋषिगण वहां पे थे उस नाव में और उसको प्रलय काल तक, प्रलय के समय तक वो चलाते रहे। आंशिक प्रलय हुई थी और उस प्रलय को मैं वो उस नाव को अपनी सींग से, उस मछली का सींग भी हो था उसमें रस्सी बंधी हुई थी और वह उसको खींचते रहे इस प्रकार से। काफी इंटरेस्टिंग लीला है। ठीक है, जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा करी। प्रश्न यह है कि नाव को कहां लेके गए? अब क्या बोले, शास्त्र में तो वर्णन नहीं है कि नाव को कहां लेके गए, तो हम कह नहीं सकते। अब यहाँ पे एक छोटा सा झगड़ा है। झगड़ा यह है कि, झगड़े के बारे में सुनने में हम लोग उत्सुक हैं, क्या झगड़ा है? झगड़ा ये है कि क्या हर मनवंतर के बाद प्रलय होती है? आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन आप तात्पर्य में देखेंगे कि थोड़ा सा झगड़ा, झगड़ा मतलब थोड़ा मतभेद है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि झगड़ा जो है, झगड़ा नहीं सॉरी, ये जो प्रलय है ये केवल एक जादू मात्र था और ऐसा कर सकते हैं भगवान, जैसे कि उन्हें मार्कंडेय ऋषि के संग किया था। और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अजीव गोस्वामी जी कहते हैं, और टीका में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरे श्लोक भी कोट किया हुआ है कि कौन सा शास्त्र भी याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था उसको, तो उसमें बताते हैं कि वो श्लोक कोट बताते हैं कि नहीं, हर मनवंतर के बाद एक आंशिक प्रलय होती है। तो दोनों ही बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी के हर दिन सुबह नहीं, ब्रह्मा जी के दिन के अंत में रात्रि के समय, ठीक है, ब्रह्मा जी की रात्रि के समय जो प्रलय होती है, रात्रि शुरू होने के समय, उसमें सारे लोग एक्सेप्ट महरलोक, महरलोक नीचे आइए, ब्रह्मलोक के नीचे कौन सा है, तपलोक, से लेके नीचे महर की जन, जहां तक यहां तक डाउट है, लेकिन तीन लोक हैं, ब्रह्मलोक, तपलोक और महरलोक, महरलोक तक रहते हैं और बाकी नीचे सब ध्वंस हो जाता है और उसके ऊपर के लोगों को गर्मी लगती है तो ऊपर चले जाते हैं, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, स्थिति रहती। और इस समय प्रलय में क्या होता है, तीसरा स्कंद भागवत का, उसमें ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं पढ़ेंगे तो बताते हैं, उसमें सारी सृष्टि जो है वो गर्भोदकशा विष्णु के पेट में रहती। तो ये मत्स्य अवतार वाली जो प्रलय है वो आंशिक प्रलय है, इसमें इसमें ग्रहों का नाश नहीं होता है, लेकिन अब आंशिक प्रलय का अर्थ यही है बताए, आंशिक प्रलय, पूरा प्रलय नहीं हो रही है, ठीक है, धरती को इफेक्ट करता है कह सकते हैं। उस जो भी आप बोल रहे हैं उसको मुझे रेफरेंस दीजिए, मैं कुछ अस्वीकार या स्वीकार नहीं, इतना है कि आंशिक प्रलय होती है बस, ठीक है, कितना नष्ट होता है पता नहीं। तात्पर्य, भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता, फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रमाणिक शास्त्रों, हाँ लिखा हुआ है, विष्णु धर्मोत्तर मार्कंडेय पुराण हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्रील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत में प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे देता हूं उस लीला में क्या हुआ। एक सत्यव्रत नाम के राजा होते और वह एक बार कहां थे, नदी में थे कि, हाँ नदी में थे, ठीक है, नदी में वह कुछ जल अंजलि भर के जल समर्पण करने के लिए गए थे, तो उनके हाथ में एक मत्स्य आ गया और बोला कि यहाँ के लोग मुझे खा जाएंगे, तो आप मुझे अपनी रक्षा कर, रक्षा, अपनी सुरक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बर्तन में डाल दिए, तो बर्तन में डाले पानी के, तो उसमें फैल गए बर्तन के बराबर, कहते ही तो बहुत छोटा पड़ रहा है, तो फिर क्या है, अच्छा चलिए ठीक है, तो अंत वहां लेके गए, कुएं में डाल दिए, तो कुएं में डाल दिए, कुएं में फैल गए, अरे ये तो बहुत छोटा पड़ रहा है, तो फिर कुएं से निकाल करके तालाब में डाल दिए, तुरंत ही इसको उसमें भी फैल गए, कहते अरे ये तो बहुत छोटा पड़ रहा है, फिर तालाब से डाल के फिर नदी में डाल दिए, फिर उसमें और विस्तारित हो गए, कहते हैं ये तो थोड़ी छोटी पड़ रही है, फिर वो सागर में डाल दिए, जब सागर में डाल रहे थे तो कहते हैं ये सागर के जंतु मुझे खा जाएंगे, तब जो है सत्यव्रत मुनि, सत्यव्रत राजा कहते हैं ये आप कोई सामान्य मत्स्य नहीं है, आप साक्षात भगवान हैं। तो फिर भगवान कहते हैं हाँ, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी और एक वो नाव आएगी, आप जितने भी योनियों के बीज हैं उसको रखिएगा, उसमें ऋषिगण बैठेंगे, सप्तऋषि जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है बैठेंगे, और मैं एक रस्सी से उसको आप बांध लीजिएगा, वासुकी नाग थी रसा, वासुकी नाग रूपी रस्सी थी, और मेरी सींग में आप उसे बांध दीजिएगा, प्रलय काल में मैं इधर से उधर डोलता रहूंगा, और तुम जो मेरे प्रति जिज्ञासा करोगे, मतलब उस समय भी भगवान मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत मुनि को सत्यव्रत राजा को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, तो कह रहे तुम्हारी इस जिज्ञासा के द्वारा तुम हृदय में मेरी महिमा को समझ पाओगे। तो ये भी आप लोग पढ़ सकते, ये 8वें स्कंद में है, तो आप लोग एटलीस्ट उसका अनुवाद पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा होमवर्क हो जाएगा लेकिन पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा आप, और अधिक डिटेल्स में समझ सकते हैं। इस प्रकार से विनोदपूर्ण और बड़ा सुंदर मत्स्य अवतार पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक और देख रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए, सुरासुराणाम उदधिम मथनताम मंदराचलम दध्रे कमठरूपेण पृष्ट एकादशे विभु सुर असुराणाम उदधिम मथनताम देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र को मथा गया। कौन से समुद्र को? शीर समुद्र को। ठीक है, शीर मतलब दूध। और किसके द्वारा मतलब मथा गया? मंदराचलम, मंदराचल को, मंदराचल के द्वारा मथा जा रहा था, तो कह रहे हैं मंदराचलम दद्रे कमठ रूपेणा, मंदराचल को अपने पीठ के ऊपर धारण किया भगवान ने, किस रूप में? कमठ रूपेणा, कमठ मतलब कच्छप रूप में, कछुए के रूप में, कछुआ समझ में आ रहा है। ठीक है, पृष्ठे एकादशम विभु, पृष्ठे मतलब अपनी पीठ पे धारण किया और वह 11वें अवतार थे। महाराज जी बहुत विनोद में बोलते हैं, कहते हैं कोई व्यक्ति अपने को भगवान कहता है तो 1 क्विंटल का पत्थर लीजिए या 1 टन का पत्थर लीजिए और उसकी पीठ पे रखिए और रगड़िए उसको। वैसे तो देखा जाए तो बहुत बहुत ही हीन है हम लोग, तो भगवान के ऊपर जब पूरा मंदराचल रगड़ा जा रहा था, बहुत तेज से घर्षण हो रहा था, तो भगवान को बहुत अच्छा लगा ऐसे कोई खुजला रहा है पीठ पे और सो गए भगवान, ये स्थिति है भगवान। और ये समझना चाहिए कि ये रूप धारण क्यों किया, क्योंकि मंदराचल पर्वत को जब शीर समुद्र में डाल रहे थे तो वही अंदर चला गया, अब मथनी ही नहीं है तो मथेंगे कैसे, ये प्रॉब्लम हो गई। कभी कभी आपने देखा है ना, अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि मैंगो जूस था वो चम्मच ही उसमें चला गया। तो वो तो कम से कम उसका पेंदा है, मान लो चम्मच चला ही गया एकदम नीचे, तो कहेंगे अरे मैंगो जूस तो है, मैं निकालूंगा कैसे, तो उनका इंस्ट्रूमेंट ही गायब हो गया। तो फिर भगवान नीचे से आते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ कह रहे थे कोई? यस,
जैसे जब भगवान की खुजली हो रही थी उनकी जो सांस चल रही थी उससे समुद्रों की लहरें अभी तक।
हाँ, बहुत सुंदर, देखिए बहुत अच्छी बात बताया प्रभु जी ने, जब वो सो रहे थे तो जो सांस चल रही थी तो समुद्र की लहरें आ रही हैं जा रही हैं। देखिए कितना सुंदर बात है, अगर हम समुद्र की लहरें देखें तो हमें किसका स्मरण करना चाहिए? कश्यप भगवान। अब ये इतने होता क्यों नहीं, क्योंकि हम सुनते बहुत कम है। अगर हम सुने बहुत अधिक बार बार कश्यप भगवान के बारे में, तो समुद्र की लहरों को देख करके भी आपको ये नहीं स्मरण होगा कितना सुंदर सीन है मेरे भोग के लिए, ना स्मरण होगा कश्यप भगवान की सांस से। अब प्रश्न ये है कि क्या अभी भी सांस ले रहे हैं? इसका उत्तर मुझे नहीं पता, मतलब अभी भी हैं और कहां सांस ले रहे हैं, ये भी मतलब ये भी प्रश्न कोई लॉजिक लगाने लगेगा, अरे सांस तो वो शीर समुद्र में ले रहे हैं, हमारा समुद्र तो शीर का है नहीं, यहाँ कैसे लहरें आ रही हैं? तो लॉजिक मत लगाइए, भगवान के लीलाओं को समझना अचिंत है, खाली इसका आस्वादन करना चाहिए, सुनना चाहिए। ठीक है, तात्पर्य सॉरी अनुवाद, भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथाने के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बने। देखिए एक बात समझिएगा कि हम लोग का परम भाग्य है, आज मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि प्रभुपाद जी जैसे परमहंस वैष्णव की कृति हमको प्राप्त है, ऐसी भाषा में जो हम समझ सकते हैं। परमहंस वैष्णव तो सारे आचार्य हैं, लेकिन संस्कृत तो प्राय हमें किसी को आती ही नहीं, मतलब बहुत कम लोगों को आती है। तो प्रभुपाद की कृपा इतनी अद्भुत है कि अपने सुंदर अद्भुत तात्पर्यों को उन्हें और सारे आचार्यों की टीका लेकर के अद्भुत तात्पर्य को लिखे हैं, अपना संग सबको दे रहे हैं। और जब हम इसको बोलते हैं, इसको उनको बोला और सुना जाना चाहिए। माई बुक्स आर मेंट टू बी हर्ड, प्रभुपाद जी बोलते। ये जो तात्पर्य है आप पढ़ रहे हो वो तो फायदेमंद है ही, लेकिन कान के द्वारा जब प्रवेश करता है तो अधिक लाभ होता है, चित्त में गहरा प्रभाव जाता है। तो इसलिए भले आपको पता हो लेकिन फिर भी सुनना चाहिए। जैसे मान लो आपको पता हो कि आज क्या बना है, मान लो कल खिचड़ी थी आज फिर खिचड़ी बनेगी, तो आपको पता है ना, फिर भी हम ग्रहण करते हैं क्योंकि इससे हमारा पोषण होता है। Does make sense? तात्पर्य। और इस जगत में भी देखें, किसी की निंदा करते हैं तो एक बार करके चुक जाते हैं, बार बार बारंबार है ना, बार बार करते हैं तो वो जितनी बार करते हैं उतना और हृदय में वो बैठ जाती और एनीथिंग वी डिस्कस गोज वन लेवल डीप इन अवर हार्ट। कुछ भी चीज की हम चर्चा करते हैं वह हमारे हृदय में एक लेवल और गहरी चली जाती है। तो इसलिए भगवत चर्चा करना ही चाहिए। कल ही हम सुन रहे थे ना बोधयंता परस्परम। यस प्रभु,
एक जगह लिखा था क्रोध का अर्थ है दूसरों की सजा खुद को देना।
बहुत सुंदर बात है, इन्हें कहा क्रोध का अर्थ है दूसरों की सजा खुद को देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दूसरों कहेंगे इसके मुंह तोड़ दूंगा तो वो कुछ नहीं, अपने को दुख दे रहे हैं। ऐसा हुआ जैसे अंगार को हाथ में लिया, उसको मरता हूं मैं, मारता हूं, अरे तेरा हाथ तो जल रहा है ना भाई। बहुत अच्छी बात सार्वभौम प्रभु कहते हैं, जिसको आप देखना भी नहीं चाहते उसको हृदय में क्यों धारण कर रहे हैं, है कि नहीं? तो खैर अभी हम लोग क्रोध पे ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। मैंने बोला था ना अध्यापन है, यही तक क्रोध पे चले, पूरी कहानी क्रोध पे चली जाएगी। हम खाली बात ये कर रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को, अवतारों का स्मरण करता ही होगा जब हम उनके बारे में प्रचुर मात्रा में सुनेंगे। ठीक है, तात्पर्य एक आप पढ़िए अनुपम कृष्ण, इतना आवाज ठीक है कि नहीं?
एक बार,
हाँ ठीक।
आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिसमें वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कश्यप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया।
ध्यान देने वाली बात है, समुद्र का जल क्या था? जल नहीं था, दूध था। अगर भाई देखो, अगर यहाँ थोड़ा सा दूध कम मिले तो शांति से रह लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बहुत दूध पीना है, बहुत दूध पीने की इच्छा होगी तो हो सकता हो भगवान आपको या हमको क्षीर सागर का कछुआ बना दें, पीते रहो दूध जितना चाहो। अगर ये तो विनोद की बात है, लेकिन मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि कोई कमी नहीं है। स्वर्ग में भी खाने पीने की कोई कमी नहीं, वस्तुतः इस जगत में भी खाने पीने की कोई कमी नहीं, कमी केवल मिसमैनेजमेंट की वजह से। मुझे बहुत अच्छी बात सनक सनातन प्रभु बता रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने गायों के संबंध में बताया कि पहले जमाने में गाय दूध के लिए नहीं की जाती थी। गायों का पालन इसलिए होता था कि बुल्स प्राप्त हो, बुल क्या बोलेंगे, बैल प्राप्त हो और उससे खेती हो। दूध तो एक बाई प्रोडक्ट था, दूध तो ऐसे ही रहता था। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, तात्पर्य में बोलते हैं कि किसी भी गृहस्थ के पास 8-10 गैया तो होती ही थी, किसी के पास भी। और साधु जाएगा और थोड़ा दूध मांगेगा तो उसे कोई कठिनाई नहीं होती थी देने में, दूध एक बाई प्रोडक्ट था उसका, बिना आश्चर्य की बात। और ये प्रमाण है भागवत गीता, भागवत गीता कृषि गोरक्ष वाणिज्य, कृषि उद्देश्य था इसलिए गोरक्षा उससे होती थी, और अगर एक्सेस हो तो वाणिज्यम होता था। अभी क्या है, वाणिज्यम इसीलिए कृषि गोरक्ष, इसलिए एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हमारे एक भक्त मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर आप गोमूत्र को इकोनॉमिकल बना दोगे तो उसके लिए भी इंजेक्शन लगने लगेंगे, गाय अधिक अधिक गोमूत्र दे। क्योंकि बुद्धि लोगों की इस प्रकार की, हर चीज में धन की वैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन हम डिफ्लेक्ट नहीं करते। पॉइंट यह है कि भगवान कश्यप ने इस प्रकार से अवतार लिया था। ठीक, आगे पढ़ते हैं। धान्वंतरम द्वादशमम त्रयोदशममेवच अपाययत् सुरान्यन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रियः। बारवां अवतार कौन सा था? धन्वंतरी भगवान का। और आप जानते हो धन्वंतरी भगवान ने ही आयुर्वेद दिया है और सारे रोग ठीक करने की शक्ति इनके पास है। त्रयोदश अवतार क्या था? मोहिनी का अवतार। आपायत सुरान्यान्यान मतलब आपायत मतलब पीने के लिए दिया। किनको? देवताओं को। जो अमृत के बारे में पिछले श्लोक में चर्चा हो रही थी, तो अमृत जब निकला तो उन्होंने देवताओं को दिया। और अन्यान मतलब अन्यान मोहयन असुरों को मोहते हुए किस रूप में? मोहिन्या मोहिनी के रूप में, मोहिनिया स्त्री रूप में, स्त्री रूप में ने मोहिनी का रूप धारण किया। मैं इस पे छोटा सा कमेंट ये करता हूं कि देखो भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि स्त्री भी बनने के लिए तैयार है, भिखारी भी बनने के लिए तैयार है। किसका स्मरण हो रहा है? वामन देव। तो इस प्रकार से भगवान कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए। जो सब जगह परम पुरुष के रूप में विख्यात है वो माता जी भी बन सकते हैं। ये भी एक अद्भुत बात है। और जहां ध्यान दीजिएगा, उनका एक अलग लोक है मोहिनी देवी का। मोहिनी देवी या मोहिनी देव जो भी कह लीजिए, उनका मोहिनी भगवान का एक अलग लोक है जहां उनकी पूजा करते हैं। जा तो सकते हैं लेकिन ब्रह्मचारी रह पाएंगे नहीं, कहना कठिन है। ठीक है, जब शिव जी भ्रमित हो गए तो ब्रह्मचारियों के लिए फेवरेबल नहीं है कि मोहिनी अवतार के रूप में जाए। ठीक है ना, क्योंकि कितने देवता हम हुए हैं हम समझ नहीं पाए। वैसे महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि जब मोहिनी आई तो देवता क्या देखे कि मेरी माँ आई है, माता के रूप में देखा। और असुर जब देखे तो सभी सोच रहे थे यह तो मेरे से शादी करने के लिए आई है। ऐसा हर असुर सोच रहा है और अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, देखिए हम लोग ऐसे खराब कैरेक्टर वाले नहीं है, हम देख रहे हैं कि तुम्हारे मतलब सिंदूर उन्दूर नहीं लगा, इसका मतलब तुम शादी नहीं की हो और लग रहा है कि तुम पति ढूंढ रही हो। और सब लोग सोच रहे हैं कि ये मुझको ही ढूंढ रही है भगवान को। देखो ये कोई मुश्किल नहीं है ना, गोलोक में भगवान हर ग्वाल बाल को ऐसा लगता है कि उसी तरफ देख रहे हैं। तो मोहिनी के लिए करना क्या कठिन है कि हर असुर ये सोचे तो मेरी तरफ ही देख रही है, ये तो मेरी तरफ ही देख रही है। इस प्रकार से बहुत ही विनोदपूर्ण लीला है भगवान की। जब आएगा कभी भगवान ने चाहा तो वहां पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो समझना चाहिए कि भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं। तो 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्यों द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत दान किया। ठीक है, जय हो नरसिंहदेव भगवान की जय। चतुर्दशम नारसिंहम
बिभ्रत दैत्रेन्द्रमूर्जितम
ददार कर जयरूरा एर काम कटकृद यथा। ये बहुत सुंदर है। देखिए 14वां अवतार क्या हुआ? नारसिंह नरसिंह रूप में स्वरूप लक्षण आकृति नरसिंह के रूप में आए, विव्रत मतलब धारण किया। दैत्येन्द्रम ऊर्जितम जो दैत्यों का इंद्र था और ऊर्जित मतलब अत्यंत शक्तिशाली। ऊर्जा समझते हैं आप? ऊर्जा शब्द समझते हैं? शक्ति। ऊर्जितम बहुत शक्तिशाली दैत्य था। उसको क्या किया भगवान ने? क्या भगवान ने कार्य किया? दधार कर जयर। तो कह रहे हैं कर जय कर ज हाथ से उत्पन्न कर ज का समझ रहे हैं? अरे फोकस मत हो, हाथ से क्या उत्पन्न होता है? नाखून। तो ये देखे ना करज शब्द बड़ा सुंदर है। करज मतलब हाथ से उत्पन्न अपने नाखूनों से क्या कह रहे हैं? उरव गोद में बिठा दिया। हिरण्यकश्यप को गोद में बिठाना क्या आसान काम है? आसान काम है। तो ये दिखा रहा है कि भगवान की शक्ति कितनी अद्भुत है। गोद में बिठाया और कह रहे हैं एर काम कटकृत यथा। एरक का एक घास होती है, एरक होता है, उसमें गांठे गांठे सी होती हैं। तो अगर उसमें गांठे ना हो, गांठे होंगी तो काटने में कुछ कष्ट होगा। जैसे बांस की समझते हो, बांस की गांठ समझते हैं? तो बांस को जब आप काटेंगे सीधा सीधा तो जहां गांठ होगी वहां काटने में कठिनाई होगी। तो बोल रहे हैं कि ऐसी घास जो बड़ी बड़ी आसानी से फाड़ देता है, उस प्रकार से वैसा वक्षस्थल वाला जो हिरण्यकशिपु था, जिसको इंद्र का वज्र भी नहीं फाड़ सकता था, उसको भगवान ने करजैर अपने नाखून से फाड़ दिया। तो भगवान की अद्भुत शक्ति का यहां पे अद्भुत शक्ति द्योतित होती है। ठीक, शब्द बड़े अद्भुत हैं। क्यों एरकाम का बोल रहे हैं? वो एक बहुत घास की तरह फाड़ दिया, उसमें कोई उनको परिश्रम नहीं हुआ। हाँ, जैसे कल प्रभु जी ने धोती फाड़ी थी, लेकिन धोती फाड़ने में भी इतना थोड़ा परिश्रम हो सकता है, भगवान को बिल्कुल परिश्रम नहीं। ये बड़ी प्रेरणादायक बात है। हमारे हृदय में भी जो भी अनर्थ रूपी असुर हैं, जब भगवान चाहेंगे, हमारे प्रयासों को दिखेंगे, कृपा करके, तो बड़ी आसानी से फाड़ देंगे उनको। मालूम भी नहीं चलेगा कि वह कभी इतने बड़े शक्तिशाली दैत्य थे, काम क्रोध इत्यादि जो भी। कहां गए? 14वें अवतार में चौदहवें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यप के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। लट्ठा मतलब एक्चुअली घास है, तिनके की तरह फाड़ दिया उसको। ठीक है, अभी है 10 मिनट, तो हम लोग 19वें को भी देख लेते हैं। पंचदशम वामनकम् कृत्वा गाद्वरं बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिपिष्टपम्। 15वें अवतार कौन से हुए? वामन देव के। पंचदशम वामनकम, वामन का अर्थ है बौना ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण के रूप में आए। कृत्वा मतलब धारण किया, अगात अध्वरम बले, अध्वरम का अर्थ है यज्ञ स्थल। तो भगवान बलि महाराज के यज्ञ स्थल में आए, अगात अध्वरम बले, बलि महाराज के यज्ञ स्थल में एक बौने ब्राह्मण के रूप लेकर के आए। और क्या किया उन्होंने? पदत्रयम याचमाना, 3 पद की याचना करी। कठिन लग रही संस्कृत? नहीं, आसान है। प्रत्यादित्सु त्रिपिष्टपम, प्रत्यादित्सु का मतलब उत्तर है, उसका कारण बता रहे हैं कि क्यों 3 पद की इच्छा करी। क्योंकि जो त्रिपिष्टपम है, जो तीनों लोगों का राज्य था, जिसके राजा थे इंद्र अदिति के बेटे, उनको वह वापस प्राप्त हो। तब एक प्रश्न आ सकता है, अभी प्रश्न आप लोगों से किया जा रहा है, क्योंकि लीला तो आप जानते हैं, लेकिन प्रश्न कर रहा हूं उस लीला पे कि भगवान क्या बलि महाराज के संग युद्ध करके इंद्र को राज्य नहीं दे सकते थे? तो ये बौना ब्राह्मण बनने का कारण क्या था? युद्ध करते अदिति से प्रसन्न थे, देवताओं से प्रसन्न रहते ही हैं, तो ब्राह्मण बनने की क्या जरूरत थी? मुझे माइक के बिना कुछ सुनाई नहीं देता है। यस,
गुरु और ब्राह्मणों को महाराज बलि ने प्रसन्न किया था।
यस,
इस कारण से
बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे, गुरु की सेवा कर रहे थे, भगवान विष्णु की उपासना कर रहे थे, इस कारण से भगवान विष्णु उनको मार नहीं सकते थे। फिर भी क्या बोलते हैं? तथापि देवी, बहुत सुंदर श्लोक, महाराज बार बार बोलते हैं, फिर भी आपने जो इच्छा करी है हे माता अदिति, इसको पूरा करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि बलि महाराज धर्म के पथ पे चल रहे हैं, उनको मारना, मार के तो नहीं कर सकता। बड़ा ने अदिति ने भगवान कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में क्या इच्छा है कि असुर सारे मारे जाएं और उनकी पत्नियां रोएं, लेकिन इस इच्छा को मैं पूर्ण नहीं करूंगा। भगवान ने उस इच्छा को पूर्ण नहीं किया, किया था नहीं किया था, लेकिन भगवान कहे फिर भी, तथापि, ये कठिन है आपकी इच्छा कि आपके बेटे को राज्य प्राप्त हो, फिर भी मैं कुछ उपाय सोचूंगा। और वो इस प्रकार से वामन रूप में, अब ये सोच लीजिए कि जो उपाय सोचे वो कोई सोच नहीं सकता था। भगवान के उपाय बड़े अद्भुत हैं, बौने रूप में जाएंगे, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि बौने ब्राह्मण के रूप में आएंगे। और बहुत सुंदर भी है, जब भगवान बौने ब्राह्मण के रूप में आते हैं, ब्रह्मचारी के रूप में, कोई उनको कुशाग्रास दे रहा है, घास दे रहा है, कुछ उनको ये क्या है, ब्राह्मण थ्रेड दे रहा है, ब्राह्मण थ्रेड क्या बोलते हैं, उपवी जनेऊ दे रहा है, ऐसे कोई छाता दे रहा है, कितना सुंदर है। गोपिन दे रहा है, कितना सुंदर है। भगवान जो सभी के मालिक हैं, उनको सब लोग आकर के थोड़ा थोड़ा कुछ करके दे रहे हैं, और कितना सुंदर लग रहे हैं वो छाता लेकर के ये अद्भुत है, ब्रह्मचारी छाता ले सकते हैं कम से कम प्रमाणिक है, छाता लेके पहुंच रहे हैं और उनके तेज से सब लोग निस्तेज हो गए, उनका तेज देख के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो बलि महाराज बहुत पूरी कथा तो आप जानते ही हो, तो उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, आपको क्या बताऊं, तो कहते हैं मुझे बस केवल 3 पग चाहिए। ये एक बड़ा अच्छा कमेंट था, कटाक्ष कहना चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा कि अरे आप जान समझदार नहीं है, मैं पूरे तीनों लोगों का राजा हूं और आप केवल 3 पग मांग रहे हैं। तो बहुत सुंदर उत्तर भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति 3 पग से संतुष्ट नहीं हो सकता है तो वह तीनों लोगों के राज्य से भी संतुष्ट नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया। दूसरा बताया कि जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है उसका तेज समाप्त हो जाता है। तो इसलिए उसके बाद आप जानते हैं कि तीनों पग में दो ही पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिए, कितना अद्भुत है। और फिर तीसरा पग उन्होंने बलि महाराज के ऊपर रखा। तो ऐसा इस प्रकार से उन्होंने बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया। कितने खराब भगवान है। नहीं, जब भगवान कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले में इतना देखते हैं कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगले मन्वंतर में भगवान इंद्र को कहेंगे, इस इंद्र को, कि तुम अपना पद त्यागो। वो नहीं त्यागेगा तो भगवान उसको जबरदस्ती नीचे लेके आएंगे और बलि महाराज को बिठा देंगे। हम लोग सुनते हैं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, अभी आने वाला है। तो इंद्र के अरियों से, इंद्र अपने शत्रुओं से जब परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो भगवान आते हैं। लेकिन जब बलि महाराज इंद्र बनेंगे तब कोई अरी नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान स्वयं रक्षा करेंगे। इस प्रकार से आपको कैसे पता? मेरी दिव्य दृष्टि है, ये सब मेरे रियलाइजेशन हैं। नहीं, सब शास्त्र में वर्णन है। इस प्रकार से हाँ, एक बहुत अच्छी बात हमारे अनंत कृष्ण प्रभु बड़ा विनोदपूर्ण बात कहे, मुझे बड़ी अच्छी लगी। बोले प्रभु जी क्यों चिंता कर रहे हैं, सारी गवर्नमेंट फिक्स हो चुकी है, कौन राजा बनेगा, कौन इंद्र बनेगा, सत्युग में कौन क्या होगा, इतना चिंता करने की हम लोगों को क्या जरूरत है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, है ना। और कितना हम लोग अपनी वाणी को इस वर्णन में व्यर्थ करते हैं, अब ये हो रहा है, वैसा हो रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था प्रभुपाद जी का तात्पर्य, शायद नहीं भागवत का 3रा स्कंध, सृष्टि वैसी ही है जैसे पहले थी, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, निकलो यहां से। मतलब लेसन वी हैव टू लर्न इज निकलो यहां से, अपने कर्तव्य करने हैं, लेकिन ये कोई पहली बार कलयुग नहीं आया है, इसके बाद फिर सत्ययुग आएगा। जैसे आप आज कोई पहली बार थोड़ा क्या कहते हैं, सुबह हो रही है, फिर रात होगी, फिर ऐसे चलता रहेगा। हाँ, कोई कुछ बोलने वाला था
कौन? जब वामन भगवान ने बलि मैंने सब कुछ लिया, तो वैसे जब भगवान जिस पे कृपा कर सब कुछ ले लेते हैं उससे, उसके बाद फिर रिश्तेदार लेते हैं, ऐसा
देखिए ये तो बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी। यस्या मानो गृहनामी हरिष्यत धनम शने, सही बात है, जिस पे विशेष भगवान कृपा करना चाहते हैं वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अपनी भौतिक आसक्तियों के कारण वह भगवान के पास नहीं पहुंच पाता है वैसा वक्त, तो उसका सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन बलि महाराज को जो उन्हें वैभव दिया सुतल लोक में, वह इंद्र से भी बड़ा है और साक्षात भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य है, तो कहां कुछ छीना है कि नहीं। अगर बोला जाए कि भाई ये रूम छोड़ करके आपको महल दिया जा रहा है तो कोई कठिनाई थोड़ा ना बोलिए, ठीक है ना।
जैसे प्रभुपाद जी से भगवान ने छीना पहले, हाँ, उसके बाद इतना दिया, पूरे संसार में उनका सम्राट।
भौतिक रूप से भी देखा जाए तो प्रभुपाद जी के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एकदम खाने तक के बीच में एक बार पैसे की कठिनाई थी, कपड़ा भी नहीं था ठीक से, लेकिन जब भगवान देना चाहे तो कितना भगवान उनको दे दिए, पूरे हर प्राय हर देश में उनके लिए घर था। इसको पढ़ लेते हैं। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण यानी वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदयों से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज प्रदान कर सकते हैं, और इसी प्रकार से छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज वापस भी ले सकते। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बात। उसी प्रसंग में बलि महाराज कहते हैं कि भगवान कौशिक जी ने आपको जल दिया था इसलिए वह इंद्र बन गए, कोई कौशिक जी रहे होंगे। तो अब यहां तो हम बड़े खुश होते हैं कि भगवान थोड़ा सा देने से बहुत वापस करते हैं, लेकिन जब भगवान लेना चालू करते हैं तो लोगों को कठिनाई हो जाती है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि भगवान कभी भी किसी का अहित नहीं करते। देखिए, इस जगत की सारी भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाए लेकिन भगवत प्रीति नहीं प्राप्त हो तो सुखी रह जाएंगे हम, तो भगवत प्रीति प्राप्त हो। अभी हमने प्रहलाद महाराज के बारे में सुना था कि कृतार्थ हो गया हूं आपके सेवक की सेवा करके, भगवत प्रीति मिल गई है, भाव प्राप्त हो गया है, तो फिर उसको आज कुछ उसको प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाएगा। कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो हम यहाँ रुकेंगे। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभु।